ध्रुव, जो अपने बालों में जेल लगा रहा था, अचानक रुक गया और शीशे में वंशिका की परछाई को देखते हुए मुस्कुराया। उसने बेबसी से सिर हिलाया, फिर बेपरवाही से कंधे उचकाते हुए एकदम से बोला, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई जेल भुन रहा है? ये सुनकर वंशिका झेंप गई थी और जल्दी से आंखें चुराते हुए धीरे से बोली, मैं जेलस फील नहीं कर रही और मैं काफी प्रैक्टिकल लड़कियों में से हूँ, प्रैक्टिकल सोचती हूँ, मैं जेलस फील क्यों करूंगी? ध्रुव ने उसे चिढ़ाते हुए चूमा और अपनी आगोश में लेते हुए बोला, वैसे भी तुम्हें जेलस फील करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा हूँ। पर हाँ, अगर कोई खूबसूरत लड़की सामने से आकर थोड़ा बहुत प्यार करना चाहे तो मैं उसे मना भी नहीं करूंगा। तुम्हें पता है ना, मुझे किसी का दिल दुखाना बिल्कुल पसंद नहीं है। अब जैसे ही ध्रुव ने थोड़ा सा मजाकिया अंदाज में वंशिका को छेड़ा, तो ये सुनकर वंशिका की आईब्रोज सिकुड़ गई और उसके हाथों में जो तकिया था उसने वही उठाया और सीधे ध्रुव के सिर पर दे मारा और मुंह फुलाते हुए जल्दी से बोली, तुम्हारी तो, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किसी और के बारे में सोचने की भी? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। ये बोलकर फिर वो उस पे तकिए बरसाने लगी और ध्रुव बचने के चक्कर में उसके करीब आ गया। दोनों एक बार फिर एक दूसरे को बाहों में भरकर प्यार में खो गए थे। फिलहाल इसी बीच पूरा आधा घंटा बीत चुका था और वे लोग अब ज्यादा देर नहीं करना चाहते थे, इसलिए बिना देर किए फटाफट फार्म हाउस की ओर रवाना हो गए। जैसे जैसे वे फार्म हाउस की ओर बढ़ रहे थे, वैसे वैसे सभी के चेहरे के हाव भाव पूरी तरह डार्क होते जा रहे थे और उनकी आंखों में शैतानी चमक दिखाई दे रही थी। वहीं आकाश और सुमित दोनों ही काफी गहरे विचार में लग रहे थे और लगातार अपने फोन पर कुछ सर्च कर रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वे आने वाली मीटिंग के लिए खुद को तैयार कर रहे हों। इतना ही नहीं, आहान ने टाइगर और मारिया, जो कुछ दिनों के लिए अब विदेश में शिफ्ट हो चुके थे, उन्हें भी एक मैसेज भेज दिया था। लेकिन अचानक ऐसा क्या हो गया था कि डेविल किंग की पूरी टीम इतनी परेशान हो उठी थी? वहीं दूसरी ओर अरमान ने मिनी हॉस्पिटल में वीर वसुंधरा के इलाज के लिए बोल दिया था। साथ ही दादाजी, नानी माँ और अभिमान जी, इन तीनों को उन दोनों यानी वसुंधरा और वीर पर नजर रखने की जिम्मेदारी दी थी। अब नानी माँ तो पूरी तरह से डिटेक्टिव मूड में आ चुकी थी। उन्होंने मुंह बनाया, अपनी आईब्रोज काते में यहाँ वहाँ देखा और सोचने लगी, इस बार वो वसुंधरा की कोई भी चाल कामयाब नहीं होने देंगी। जिस तरह वसुंधरा ने अरमान की शादी वाले दिन चालबाजी की थी और अरमान की शादी प्रियंका से करवाने की कोशिश की थी, अब वो ऐसा कुछ नहीं होने देंगी। सिंघानिया मैंशन में कोई भी अनहोनी नहीं होने देंगी। इसलिए नानी माँ ने अपनी आंखों पर काला चश्मा पहन लिया था, छड़ी तो उनके हाथ में रहती ही थी। अब उन्होंने अपने डिटेक्टिव रोल को पूरी तरह से जीना शुरू कर दिया था। जब नानी माँ ब्लैक चश्मा पहनकर हॉल में आईं, तब दादाजी अचानक चौंक गए और उनकी आंखें हैरानी से फैल गईं और वो एकदम से बोले, अरे ये क्या हुआ बहन जी, आपकी आंखों में कोई परेशानी है क्या? आपने ये काला चश्मा क्यों पहन रखा है? ये सुनकर जल्दी से नानी माँ ने होंठ भींच लिए, फिर वो हिचकिचाते हुए मुस्कुराई और बात बनाते हुए बोली, वो भाई साहब, आप तो जानते ही हैं कि बुढ़ापे की आंखें हो गई हैं, तो इन आंखों में जलन और खुजली होने लगी है, इसलिए आस्था बेटी ने बोला कि मैं ये काला चश्मा पहन कर रखूं, इससे मेरी आंखों में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और बहुत जल्दी मेरी आंखें ठीक भी हो जाएंगी। अब नानी माँ की बात सुनकर दादाजी एक पल के लिए चौंक गए और शांत स्वर में बोले, ठीक है, अगर आप कहें तो मैं आई स्पेशलिस्ट को यहाँ बुला लेता हूँ, वो आपकी आंखों को चेक कर लेगा और दवा दे देगा, आप क्यों परेशान होती हैं? ये सुनकर नानी माँ का दिमाग भग से उड़ गया और उनकी सिट्टी बिट्टी गुम हो गई। अब वो मुंह बिचकाकर सोचने लगी, हाय, मैं क्या करूं? भाई साहब को कैसे समझाऊं कि मैं डिटेक्टिव बनी हूं? मुझे जो दामाची ने जिम्मेदारी दी है, मुझे उसी के अनुसार तैयार रहना है। मुझे डर है कि कहीं डॉक्टर मेरी आंखें देखकर सच में दवा ना दे दे और मेरा डिटेक्टिव बनने का प्लान बिगड़ जाए। अचानक उन्होंने बेमन से कुछ सोचकर अपनी आंखें गोल गोल मटकाई और बात को हंसी में टालते हुए बोली, अरे नहीं नहीं भाई साहब, आप क्यों परेशान होते हैं? आप तो जानते हैं कि आस्था बिटिया डॉक्टर लाइन में रहती हैं, तो आस्था को इतनी तो नॉलेज है ही कि वो मुझे घर पर ही ठीक कर दे, और वैसे भी भाई साहब, मुझे डॉक्टर के पास जाने से बहुत डर लगता है। जैसे ही नानी माँ ने बात बनाई, वैसे ही दादाजी हल्का सा मुस्कुरा दिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो नानी माँ को आंखें गोल गोल मटकाते हुए देख चुके थे। क्योंकि नानी माँ भी आस्था की तरह गोल गोल आंखें घुमाकर सोचती थी, तब वो समझ गए कि जरूर नानी माँ के दिमाग में इस बार भी कोई ना कोई खुराफाती आइडिया चल रहा है। फिलहाल वहीं दूसरी ओर राधिका और रश्मि दोनों जल्दी से हॉल में आईं और नानी माँ की ओर देखकर खुशी से चहकती हुई बोली, वो नानी माँ, हमें ना कुछ शॉपिंग करने के लिए जाना है। एक तो आप जानती ही हैं, रौनक ने अपनी इतनी लंबी लिस्ट दे रखी है, उसे कितना ही सारा खाने का सामान चाहिए। जब से वो प्रेग्नेंट हुई है, उसका खाना पता नहीं कहाँ जा रहा है, दिन भर बस खाती ही रहती है, उसका खाना बंद ही नहीं हो रहा। अब ये सुनकर नानी माँ हल्का सा मुस्कुराई और अपनी छड़ी जमीन पर टिकाकर एकदम से हंसी बोली, हाय राम, ये रौनक भी ना एक नहीं 50 सनों का खाना अकेले खा जाती है। अब समझ में आया कि आहान की हालत क्यों दिन ब दिन पतली होती जा रही है, उसका खाना भी तो रौनक अकेले ही खा जाती है। लेकिन ये उसकी प्रेगनेंसी के लक्षण है,
अरे बेटा, जो प्रेगनेंसी होती है ना, इसमें सबके अलग अलग सिम्टम्स होते हैं, सबकी बॉडी अलग अलग होती है, किसी को कुछ चाहिए किसी को कुछ नहीं। अब देखो, तुम भी तो प्रेग्नेंट हो, लेकिन तुम्हें दिन में कुछ भी खिला दो तुम्हें तो थोड़ी ही भूख लगती है। थोड़े बहुत फ्रूट्स भी तो तुम्हें मैं ज़बरदस्ती खिलाती हूँ। वही रौनक है, नानी माँ मुस्कुराते हुए बोली। उसे खाने की ज़रा भी ज़रूरत नहीं पड़ती, उसे जो दिया जाए वो फटाफट खा लेती है। तब रश्मि मुँह बनाते हुए मायूस होकर बोली, जी मैं क्या करूँ नानी माँ, जब भी मैं कुछ खाती हूँ तो तुरंत ही उल्टी हो जाती है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। अब तो आकाश भी मुझे लेकर परेशान हो रहा है कि मैं काफ़ी कमज़ोर हो रही हूँ। हालांकि रश्मि खुद एक डॉक्टर थी, उसे अपने सिम्टम्स के बारे में सब पता था कि प्रेगनेंसी में ये सब कुछ नॉर्मली होता रहता है, लेकिन फिर भी वो मूड स्विंग की वजह से इस बात को लेकर अक्सर परेशान रहती थी। नानी माँ ने प्यार से उसके सिर पर हाथ रखा और ममता भरी आवाज़ में बोली, अरे मेरी प्यारी बिटिया, ये सब चलता रहता है। मैंने कहा ना, प्रेगनेंसी के अपने इफेक्ट्स होते हैं। किसी का बच्चा ज़्यादा खाने को मांगता है और किसी को कुछ भी नहीं चाहिए होता, तो वो अपनी माँ को खुद ही कुछ खाने नहीं देता। तो ये सब जो तुम्हारे साथ हो रहा है ये नॉर्मल है, इसलिए अब तुम परेशान मत हो, ठीक है? फिलहाल अगर तुम बाजार जा रही हो तो अपने साथ एक पानी की बोतल ज़रूर लेकर जाना, क्योंकि अगर पानी की कमी हो गई तो प्रॉब्लम हो सकती है। प्रेगनेंसी में एक बार को खाना ना खाओ तो चल जाएगा, लेकिन पानी छोड़ना नहीं चाहिए, भले ही उल्टी क्यों ना लग जाए। अब ये सुनकर रश्मि हल्का सा मुस्कुरा दी थी, क्योंकि पहली बार किसी ने इतने प्यार से उसे समझाया था। वरना रिश्तों के नाम पर, बड़ों के नाम पर तो उसके आसपास कोई था ही नहीं, सिर्फ नानी माँ और दादाजी ही उसके बड़े थे। फिलहाल राधिका बोली, मैं इनके साथ रहूंगी और पूरा इसका ख्याल रखूंगी, और फिलहाल हमें शॉपिंग तो करनी ही पड़ेगी ना। वैसे भी आस्था इस वक्त सोई हुई है, तो मैंने उसे डिस्टर्ब करना जरूरी नहीं समझा।
मैंने सोचा था कि उसे बाहर ले जाऊंगी तो शायद वो अंश वाला हादसा थोड़ा भूल जाएगी। अब अंश वाला हादसा सुनते ही सबके चेहरे पर फिर से मायूसी छा गई। कहीं ना कहीं सबको ये बात अजीब लग रही थी कि भला सिंघानिया मेंशन में नानी माँ और दादाजी के सामने ही अंश का यूं अचानक गायब हो जाना और फिर किसी को कुछ पता न चलना, ये कैसे मुमकिन था? वहीं अरमान भी इतना नॉर्मल बर्ताव कर रहा था, तो ये बात सभी को हैरान और परेशान कर रही थी। उसी वक्त एंजल तेज़ी से वहाँ आई और एक्साइटेड होकर बोली, मैं भी आप लोगों के साथ शॉपिंग पर चलूंगी, क्योंकि अविनाश जी ने अंश के लिए कुछ ज़रूरी सामान मंगवाया है, तो उन्होंने कहा है कि मैं आप सबके साथ जाऊँ। अब ये सुनकर रश्मि बोली, हाँ हाँ क्यों नहीं, अब दो नहीं तीन हो जाएंगी तो और भी मज़ा आएगा, चलो चलते हैं शॉपिंग के लिए। तभी राधिका थोड़ा रुककर नानी माँ को देखकर एकदम मजाकिया अंदाज में बोली, वैसे नानी माँ आप तो एकदम शेर बन गई हैं आजकल, चश्मा छड़ी और ये अंदाज लगे हाथों आपको जासूसी सीरीज की हीरोइन बना देना चाहिए। राधिका ने नानी माँ के लुक को देखकर हंसते हुए कहा। नानी माँ ने मुस्कुराकर कंधे उचकाए और बेपरवाह अंदाज में बोली, बेटा अब उम्र भले ही ढल गई हो पर दिमाग अभी भी सीआईडी के एसीपी प्रद्युमन से कम नहीं है। अब तुम लोग जाओ, जो सामान रौनक को चाहिए वो उसके लिए भी ले आओ, और हाँ रौनक के लिए कुछ सब्जी फल भी दिलवा देना, वरना उसका बच्चा सीधे पिज्ज़ा और बर्गर के साथ जन्म लेगा। नानी माँ की बात सुनकर सब खिलखिलाकर हंस दिए और एंजल को लेकर एक कार में रवाना हो गए। वहीं दूसरी ओर अविनाश इस वक्त हाल में सोफे पर बैठे नानी माँ और दादाजी के पास आ गया था, लेकिन अभिमान वहाँ नहीं था। असल में अभिमान तो मिनी हॉस्पिटल में था, जहाँ वसुंधरा और वीर का इलाज चल रहा था। वो उन्हें एक मिनट के लिए भी अकेला नहीं छोड़ रहे थे। फिलहाल अविनाश ने वहीं बैठकर गंभीर लहजे में कहा, दादाजी मैं जानना चाहता हूँ, जिस वक्त आज की ये घटना हुई उस वक्त आप लोग क्या कर रहे थे? आप लोग तो वहीं थे, सोफा ठीक आपके सामने था और आप लोग बस थोड़ी ही दूरी पर बैठे थे, तो क्या आपको जरा सा भी अंदाज़ा नहीं हुआ कि अंश वहाँ नहीं है? अब जैसे ही अविनाश ने ये सवाल किया, दादाजी और नानी माँ दोनों पल भर के लिए चौंक गए। नानी माँ ने थोड़ा मायूस आवाज़ में जवाब दिया, बिटवा हम आपको क्या बताएं, हमें लगा था बच्चा सो रहा है, आस्था बिटिया ने खुद कहा था कि वो उसे ऊपर कमरे में सुला कर आएगी, लेकिन हमने मना कर दिया, कहा कि बच्चे की नींद खराब हो जाएगी। हमारी गोद में वो सो गया था इसीलिए हमने उसे वहीं सुला दिया। फिर भाई साहब ने हमें चाय के लिए बुला लिया, हम उनके साथ चाय पीने लगे और फिर कुछ मिनट के अंदर ही ये सब कुछ हो गया। जैसे ही नानी माँ ने ये बात पूरी की, वैसे ही अविनाश ये सुनकर गंभीर हो गया। वो चुपचाप कुछ सोचने लगा और जल्दी ही उसने अपने कुछ सोर्सेस को एक्टिव कर दिया, ताकि सिंघानिया मेंशन की सिक्योरिटी को और ज्यादा मजबूत किया जा सके। वहीं दूसरी ओर फार्म हाउस की ओर बढ़ रही गाड़ियों का काफिला अब अपने अंतिम मोड़ पर था। सबके चेहरे गंभीर थे, कोई नहीं जानता था कि वहां पहुंचकर उन्हें क्या मिलेगा, पर एक बात तय थी, अब डेविल किंग की कहानी एक नया मोड़ लेने जा रही थी। आकाश, जो पूरे रास्ते चुप था, फोन पर किसी से कोड वर्ड में बातचीत करने लगा। आगे को स्टोरी जानने के लिए बने रहिए दोस्तों, और अपना फीडबैक जरूर दें। सॉरी दोस्तों, आप लोगों को डेली चैप्टर नहीं दे पा रही हूँ, अभी कुछ दिनों तक वीक में एक या दो ही चैप्टर आप लोगों को मिलेंगे,
बट थोड़ा फ्री होते ही मैं आपको हर रोज चैप्टर प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगी। प्लीज आप सब अपना फुल सपोर्ट दें और बहुत जल्द आपको मेरी 3 न्यू स्टोरी स्टोरी मेनिया ऐप पर मिलेगी, जो अरमान आस्था की ही स्टोरी की तरह बेहद खास और असरदार होगी। कीप सपोर्टिंग मी गाइज। टेक केयर टू ऑल। लव यू ऑल।